दिन भर 2 मई गुरुवार सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। प्रियंका गांधी के वोट कटवा बयान पर सियासी हलचल।
तब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है।
इशरत जहां केस में पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन आरोप मुक्त।
गुजरात की पुलिस ने जो भी कुछ किया कानून के अंतर्गत फर्ज के अंतर्गत किया, कोई गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की थी।
और सुनिएगा सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की टॉपर हंसिका शुक्ला को।
मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, सबने अच्छा एक्सपेक्ट किया, लेकिन दिस इज जस्ट वेरी आई मीन ओवर द टॉप सरप्राइजिंग।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। चक्रवाती तूफान फैनी के मद्देनजर भारत के दक्षिण पूर्वी तट से तकरीबन 8 लाख निवासियों और पर्यटकों को हटाने का काम जारी है। ऐसा अनुमान है कि अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान जमीन तक पहुंचेगा, जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के स्थानीय अधिकारी वेंडालम अशोक ने कहा है कि खतरनाक क्षेत्र में मौजूद अधिकतर लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं।
Now we are first trying to evacuate the pregnant women and the lactating mothers and particularly the old people and people in thatched houses.
हम सबसे पहले गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग और कच्चे घरों में रहने वाले लोग भी हमारी सूची में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग हताहत हों। हम लोगों का पुनर्वास कर सकते हैं और हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कर्मचारी पुनर्वास केंद्र में दूध समेत जरूरी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये थे श्रीकाकुलम के स्थानीय अधिकारी बेंडलम अशोक के शब्द। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपना वादा दोहराते हुए कहा है कि वो साम्राज्यवादी हमले से अपने देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने सेना की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा है कि सेना को संविधान की रक्षा के लिए इकट्ठा रहना होगा। उनके रक्षा मंत्री व्लादिमिर पेड्रिनो ने दोबारा कहा है कि सेना मादुरो का समर्थन करती है। राजधानी काराकश में दोनों ने अपना अपना बयान दिया। वहीं बुधवार को विपक्षी नेता ख्वाना गोइदो ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की थी कि वो सड़कों पर उतरकर मादुरो को हटाने के लिए उनके अभियान का समर्थन करें। युगांडा के प्रशासन ने 13 रेडियो और टीवी स्टेशनों को न्यूनतम प्रसारण मानकों को पूरा न करने के आरोप में संपादक समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। युगांडा सूचना आयोग ने इस घटना से पूरी तरह किसी मामले से जुड़े न होने के संकेत दिए हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोशिश विपक्षी सांसद बोबी वाइन को मीडिया कवरेज न देने के लिए की गई है। वो राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी को अगले चुनाव में चुनौती दे सकते हैं और अभी जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। उन्हें पिछले साल सोशल मीडिया टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज आज वीडियो लिंक के जरिए लंदन की कोर्ट में पेश हुए। अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। अमेरिका उन पर खुफिया जानकारी जारी करने पर केस चलाना चाहता है। असांज ने कोर्ट से कहा कि वो प्रत्यर्पण के लिए सहमति नहीं देंगे। इसका आशय यह है कि ये मामला कई महीने ले सकता है। अमेरिका का आरोप है कि उन्होंने साजिश करके रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर से जानकारियां चुराई और उन्हें सार्वजनिक किया। वहीं असांज के समर्थन में कोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी पीटर टेटचेल ने कहा,
We're here outside Westminster Magistrates Court this morning to stand in solidarity with Julian Assange.
हम सुबह से जूलियन असांज के समर्थन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने हैं। उन्होंने सच कहा। उन्होंने अमरीकी सरकार, सेना के गलत कामों, युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघनों को सार्वजनिक किया। ये बहुत बड़ी सार्वजनिक सेवा है। वो हीरो हैं, न कि अपराधी। सच सार्वजनिक करना मौलिक मानवाधिकार है। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा जानकारी लीक करने पर रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त किए जाने के मामले में सरकार उनके खिलाफ आपराधिक जांच नहीं चाहती है। हालांकि डेविड लिडिंगटन ने संसद से कहा कि मंत्रियों की जगह ये पूरी तरह अभियोजन पक्ष को तय करना है कि मामला चलेगा या नहीं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों में एक बयान की खासी चर्चा है, और ये बयान आया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से। उन्होंने कल कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी हार मिलेगी, और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत नहीं हैं वे वहां भाजपा के मतदाताओं में सेंध लगाएंगे। इस पर प्रियंका गांधी सफाई दे चुकी हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक हलचल जारी है। सपा बसपा का कहना है कि आज कांग्रेस कमजोर है, लेकिन जब वो मजबूत थी तो भाजपा जैसे ही थी। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कांग्रेस जीतेगी, जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटे।
पत्रकारों के किसी सवाल के जवाब में जब प्रियंका गांधी ने ये कहा तो उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक पंक्ति के इस जवाब से कितना बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने यह बयान बुधवार को अमेठी में दिया था, और आज रायबरेली में उन्हें जगह जगह इस बारे में सफाई देनी पड़ी। लेकिन उनके बयान पर राजनीतिक गर्मी एक दिन के भीतर ही दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस खुद स्वीकार कर चुकी है कि अब वो वोट कटवा पार्टी है।
इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की दृष्टि से भी ये जो कांग्रेस की नेता ने कल कहा कि हम वोट कटुआ हैं अब, ये एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है।
हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव प्रियंका गांधी की इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन उनकी आशंका है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के गुण बीजेपी ने कांग्रेस से ही सीखे हैं।
मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूं कि कोई भी कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा दिया हो जो वीक दिया हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैंडिडेट नहीं देती है। आज जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए ये बहाना ढूंढा जा रहा है कि हमने वीक कैंडिडेट दिया है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिलकर गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं।
तब तो कांग्रेस पार्टी भी यहां एसपी व बीएसपी के बले गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े हैं।
वहीं प्रियंका गांधी को इस बयान पर अपनी सफाई में यहाँ तक कहना पड़ा कि वो बीजेपी को फायदा पहुँचाने की बजाय मर जाना पसंद करेंगी। रायबरेली में अपने बयान के संदर्भ में पूछे गए सवालों का जवाब प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरह दिया।
इतनी विपरीत विचारधारा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके एक एक कण में यह है कि हम बीजेपी से जीवन भर लड़ेंगे, तो यह सवाल उठ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। और मैंने खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी में सिंधिया जी ने हमने खास तौर से ये ध्यान दिया है कि हम कहीं किसी भी तरह से बीजेपी की मदद ना करें। हम मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं।
बहरहाल प्रियंका गांधी के बयान पर हंगामा भले ही मचा हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि कुछ खास सीटों पर ना तो हल्के उम्मीदवार खड़े करना कोई नई बात है और न ही कोई राजनीतिक दल इससे अछूता है। ये जरूर है कि व्यापक पैमाने पर ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी करे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
चुनावों से जुड़ी खबरों में आज और क्या है ये बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। बताइए दिव्या जी।
कुलदीप, तो पहले तो यही बता दें कि प्रियंका गांधी आज सपेरों से मिली और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने सांप को भी हाथ में लिया, जिसका एक मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, शायद हमारे कुछ सुनने वालों ने भी देखा हो। दूसरी खबरों में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 6 महीने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की सभी शिकायतों पर फैसला लेने को कहा है। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मोदी और शाह को बार बार और जानबूझकर उल्लंघन करने वाला बताया था और चुनाव आयोग पर इनके मामलों में ढील बरतने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के 9 समेत कुल 11 शिकायतें रखी गई हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के वर्धा में 1 अप्रैल और लातूर में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जो वर्धा का भाषण था उसमें मोदी ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को निशाना बनाते हुए कहा था कि आतंकवादी हिंदू को सजा मिल चुकी है और इसलिए भागकर जहां देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। और लातूर में उन्होंने पहली बार वोट डालने वालों से कहा था कि वो क्या अपना पहला वोट पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने वाले पुलवामा के वीर शहीदों के नाम नहीं कर सकते।
एक और खबर बता दें, कल हमने बताया था कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय छपा था जिसमें बुर्के पर पाबंदी की मांग की गई थी, क्योंकि श्रीलंका में ऐसा किया गया श्रीलंका में आतंकवादी हमले के बाद
जी।
आज एक प्रेस वार्ता में जब लेखक जावेद अख्तर से इसके बारे में प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा ऐसा अगर करने का कोई फैसला आता है तो राजस्थान में घूंघट पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए।
बहुत शुक्रिया दिव्या, चुनावी खबरें बता रही थी। इशरत जहां इनकाउंटर मामले में आज गुजरात की सीबीआई अदालत ने प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन को आरोप मुक्त कर दिया। दोनों ने कोर्ट में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को खत्म करने की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं इशरत जहां की मां शमीमा कौसर इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। अहमदाबाद से तेजस वैद्य की रिपोर्ट।
इशरत जहां एनकाउंटर मामले में बरी किए जाने के बाद जब गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा और एन के अमीन अपने वकीलों के साथ मीडिया के सामने आए तो भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके वकील ने पत्रकारों से कहा
आज कोर्ट ने जो एप्लीकेशन हमारी थी कि गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है इसलिए ये केस आगे नहीं चल सकता वो हमारी प्रेयर कोर्ट ने ग्रांट की है। आज डॉक्टर एन के अमीन और डीजी वंजारा साहब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट ने आज लिखा है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन था और अगर इसको नहीं रोकते तो पता नहीं गुजरात में क्या होता।
दोनों ने कोर्ट में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को खत्म करने की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त पुलिस अफसरों डीजी वंजारा और एन के अमीन ने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है, लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जाए। अदालत ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। डीजी वंजारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा
उन लोगों का उद्देश्य उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की हत्या करने का था। गुजरात की पुलिस ने जो भी कुछ किया कानून के अंतर्गत फर्ज के अंतर्गत किया, कोई गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की थी।
वहीं एन के अमीन ने कहा कि इस पूरे मामले में इशरत जहां को पीड़िता कहा गया जबकि असली पीड़ित वो है।
बहुत यातनाएं झेली हम, वो यातनाएं बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो सिंपेथाइजर थे जिहादियों के, टेररिस्ट के, सो कॉल्ड विक्टिम के, एक्चुअली विक्टिम हम लोग थे। बंजारा साहब बार बार कह रहे थे छुटने के बाद ट्विटर पे हम लोग विक्टिम है और रियल में हम लोग विक्टिम है। आज हम लोगों को न्याय मिला।
उत्तर गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ ने अदालत के इस फैसले पर हैरानी जताई है।
2014 के बाद आप जो भी केस देख लीजिए, सोहराबुद्दीन का केस देख लीजिए, बाकी केसेस 2002 के देख लीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे इस तरह दबाव बना है और मैं तो कहूंगी डायरेक्टली दिल्ली से दबाव बना है ताकि वो तहकीकात और जो एविडेंस पहले इकट्ठा किया गया था वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। जो इशरत जहां की मदर है शमीमा कौसर, उनकी एफिडेविट, उन्होंने जितने आर्ग्यूमेंट जो फाइल किए थे ये केस को लेकर, उसमें पूरे सबूत उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली शमीमा कौसर ने पेश किए हैं कोर्ट के सामने और बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि कोर्ट ने उसको नजरअंदाज किया।
15 जून 2004 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास सुमसान इलाके में पुलिस ने कथित फर्जी मुठभेड़ में मुंबई की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा इशरत जहां, उनके साथी जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राणा और जिशान जोहर की हत्या कर दी गई थी। अपराध शाखा के अधिकारियों का दावा था कि इन चारों का आतंकियों से संबंध था और उनके इशारे पर ही इन लोगों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी। तेजस वैद्य, अहमदाबाद, बीबीसी।
अब खबर महाराष्ट्र से जहां गढ़चिरौली में कल एक माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवानों और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये C-60 कमांडोज का वाहन था जिसे माओवादियों ने बारूदी सुरंग के जरिए निशाना बनाया। इसके बाद आज बड़े स्तर पर वहां जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता सलमान रावी कुरखेड़ा तालुका के पास घटनास्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ सुरक्षा बलों के जवानों से बात की।
क्या हम लोग आगे जा सकते हैं बताइए? नहीं जा सकते, क्यों? आगे क्या मतलब ऑपरेशन चल रहा है या बिल्कुल सड़क को वैसे ही बंद कर दिया आने जाने के लिए?
ऑपरेशन चल रहा है।
ऑपरेशन चल रहा है। क्या और भी विस्फोटक बरामद हुए हैं?
नहीं। जो कल हुए वो ही हो गए।
तो अभी किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है?
अभी कुंभी ऑपरेशन चालू, सर्चिंग चालू।
क्या चुनौती है इस इलाके की बताइए? ये तो बता रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ये एक है, दूसरी चुनौती क्या है यहाँ?
दूसरी चुनौती सर हमारे लिए तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है
जी,
हमेशा हमें ये पूरे पहाड़ी इलाके में काम करना पड़ता है, तो बहुत टफ एरिया है, ये यहाँ का टेरेन जो है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चुनौती है। और नक्सल को भाग जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है उनके लिए, और हमारे लिए यहाँ पे उनको खोजना बहुत मुश्किल हो जाए।
ये बताइए बारूदी सुरंग कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, कितना खतरा है ये
बारूदी सुरंग? तो सर हमारे लिए तो अभी हमेशा ही हम कहीं ना कहीं वहाँ से जिला हेडक्वार्टर से हम निकलते हैं तो गाड़ियों से निकलते हैं,
तो गाड़ियों से तो नहीं जाना चाहिए,
लेकिन जिला हेडक्वार्टर से निकलेंगे तो हम तो सर इन्फॉर्मेशन में वगैरह जाएंगे तो कम से कम डेढ़ दो दिन वहाँ से चल के जाने में ही लग जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो नक्सली कहीं कैंप वगैरह करके रहते वहाँ
तो आसानी से टारगेट पे आ जाएंगे, अगर गाड़ी में होंगे तो फौरन हमला कर देंगे, पैदल चलने में तो कैजुअल्टी कम होगी।
लेकिन हेडक्वार्टर से ही पैदल नहीं निकल सकते ना, कम से कम 150 किलोमीटर हमको चल के जाना पड़ेगा, तो उतना पहुँचने के लिए हमको 5-6 दिन लगेंगे।
गढ़चिरौली में मौजूद सलमान रावी से ही कुछ देर पहले मैंने बात की और सबसे पहले आज सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के बारे में पूछा।
डीजीपी है महाराष्ट्र पुलिस के, उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि बहुत ही सघन अभियान शुरू होगा, और वो देखने को भी मिला सड़क के ऊपर। जिस वक्त हम घटनास्थल पर जा रहे थे जहां पर 15 पुलिस के जवानों को विस्फोटक से उड़ा दिया गया था, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और पूरे जगलों के इलाके में जबरदस्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये इलाका इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो बड़ी मुश्किल है। एक तरफ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगा हुआ है जो कांकेर जिला है छत्तीसगढ़ का, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है, और यही वजह है कि नक्सली जब भी घटना को अंजाम देते हैं इस इलाके में वो आराम से भाग जाते हैं, या तो छत्तीसगढ़ की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि यहाँ जंगल है, पूरा पहाड़ियां और जंगल है, बीच में गांव वाव कुछ भी नहीं है। जंगल के अंदर अंदर तक सुरक्षा बलों के जवानों को भेजा गया है ताकि ये पता चल पाए कि 500 की तादाद में जो नक्सली आए थे छापामार, वो किस रास्ते से और कैसे भागने में कामयाब हुए।
जी, और आज आप उन दोनों घटनास्थलों पर भी गए जहां ये धमाका हुआ था और जहां वाहनों को जलाया गया था, वहां आपने और रास्ते में आपने क्या क्या देखा?
देखिए पूरे रास्ते में सन्नाटा था, इस घटना का खौफ लोगों के दिमाग में है, गाँव के लोग गायब थे। जिस जगह पे वाहनों को जलाया गया था इस विस्फोट से ठीक पहले, लगभग 3 दर्जन वाहन जलाए गए, जिसमें से बड़े बड़े हाईवा की मशीनें, डंपर और जो दूसरे उपकरण हैं जो सड़क बनाने के, सड़क के निर्माण के कार्य में यूज होते थे। पहले से ही चेतावनी दी थी माओवादियों ने कि ये सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि उनका तर्क है कि सड़क के बहाने पुलिस आती है और फिर लोकल आदिवासी लोगों को परेशान करती है। जैसा कि गाँव वालों ने मुझे बताया घटनास्थल पर, और जहाँ मैं गया 50 से ज्यादा बैनर, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, सफेद बैनर थे, लाल बैनर थे, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की जो गढ़चिरौली की कमेटी है उसके बैनर थे, जिसमें वो ठेकेदारों के खिलाफ में लिखा हुआ था, और ये भी कहा था कि वो विरोध सप्ताह मना रहे हैं। जले हुए ट्रकों में से अभी भी धुआं निकल रहा है, कई ट्रकों में से तो आग भी निकल रही है। अभी तक पुलिस उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां पर ट्रक जले हुए हैं, इस अंदेशे में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी एक ट्रैप हो।
गढ़चिरौली से जानकारी दे रहे थे सलमान रावी। जैश-ए- मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने को भाजपा ने देश का गौरव बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले कहा वो सुनिए।
कई दुनिया के देश काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिस्टिंग में लगाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने कल वो भी रुकावट हट गई। हर भारतीय के लिए ये गर्व और शोभा का अवसर होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है, लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद उसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े।
अरुण जेटली कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किए जाने से खुश हैं, लेकिन इस बात से निराश हैं कि इस प्रस्ताव में पुलवामा हमले और जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था। मसूद अजहर का मामला आज भी चर्चा में रहा। न्यूयॉर्क से क्या कुछ हुआ ये बता रहे हैं सलीम रिजवी।
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने को अमरीकी कूटनीति की जीत बताया है। एक ट्वीट में लिखते हुए माइक पोम्पियो ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता गैरेट मार्क्वेस ने भी एक बयान में कहा कि मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया जाना पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शंस कमेटी की सराहना करता है कि उसने जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट के मुखिया मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया। आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद 14 फरवरी को कश्मीर में आतंकी हमले का जिम्मेदार है जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टेगस का कहना था कि मसूद अजहर आतंकी गुट जैश मोहम्मद के जनक और मुखिया की हैसियत से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मानदंडों पर पूरा उतरता है। उन्होंने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो मसूद अजहर पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर अमल भी करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के अनुसार मसूद अजहर अलकायदा से जुड़ा रहा है और उसने योजना बनाने, पैसा इकट्ठा करने, हथियार और अन्य साजो सामान को बेचने या उन्हें स्थानांतरित करने का काम किया है। दस्तावेज में कहा गया है कि मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद की स्थापना की थी और अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान से जुड़े होने के कारण जैश मोहम्मद पर 17 अक्टूबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगा दिया था। मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद की स्थापना करने के साथ उसको आर्थिक रूप से मदद भी दी थी, लेकिन दस्तावेज में पुलवामा हमले का जिक्र नहीं किया गया है जिसको लेकर भारत के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर मुख्तदर खान मानते हैं कि भारत की इस सिलसिले में कूटनीति में कुछ कमी रह गई।
उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कनेक्शन अभी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ और जब तक के वो प्रूवेबल एविडेंस नहीं बता सकते हैं तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना जरा कोर्ट से बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से अगर लीडर ने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली।
चीन ने पिछले 4 बार मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का विरोध करने के बाद कल अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर अपना विरोध हटा लिया था। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे में 2 लड़कियों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की हंसिका शुक्ला और मुजफ्फरनगर के एसटी पब्लिक स्कूल की करिश्मा अरोड़ा शामिल हैं। दोनों ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। भूमिका राय ने हंसिका शुक्ला से बात की।
नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स। मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, सबने अच्छा एक्सपेक्ट किया, लेकिन दिस इज जस्ट वेरी आई मीन ओवर द टॉप सरप्राइजिंग।
एक नंबर कट गया इंग्लिश में, शायद 99 आए आपके, अभी ऐसा लग रहा है कि एक नंबर और आ जाना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, मैं जितने मिल गए उतने बहुत खुश हूँ, नंबरों की मैंने चिंता नहीं की है।
अच्छा, अब सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से 499 मार्क्स आए आपके, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन?
आई थिंक मैंने रेगुलरिटी रखी, आई वॉज कंसिस्टेंट एंड बिल्कुल एक अनकंडीशनल और कंटिन्यूस सपोर्ट था मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का, मॉरली, मटेरियल वाइज, नोट्स में। तो आई थिंक दैट इज व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू व्हाटएवर नंबर आई हैव गॉट, 499।
आपका शुरू से आपने, क्योंकि आपके पास आर्ट साइड है, तो फ्यूचर में अब क्या है आपका करियर ओरिएंटेड?
मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, इट हैज़ बीन माय पैशन, सो आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी ऑनर्स एंड, बट मुझे फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत पसंद है, तो आई वुड लव टू आल्सो परस्यू IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज।
12th स्टैंडर्ड में आप हैं, कितने घंटे की पढ़ाई, कितने दिन की, कितनी मेहनत?
मैं आवर्स काउंट नहीं करती थी, मैं आई ट्राई टू बी रेगुलर, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, कि ऐसा नहीं कि एक साथ सारा पढ़ लिया। आई ट्राई टू सेट गोल्स कि अच्छा आज मुझे इतना पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और इतने अच्छे से पढ़ना है, तो आई यूज्ड टू स्टडी लाइक फॉर एन आवर एंड देन आई टुक एन आवर्स रेस्ट एंड सो ऑन।
ट्यूशंस जो होते हैं आजकल के वक्त में, ऐसा एक परसेप्शन बन गया कि ट्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्या आपके भी ट्यूशंस थे और कितने इफेक्टिव होते, क्या ट्यूशन के बिना इतने नंबर नहीं आ सकते?
मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि ट्यूशन ज्वाइन कर लो, बट आई वॉन्टेड कि मैं ट्यूशन के बिना मार्क्स लाऊँ, तो दैट इज़ माई पर्सनल अचीवमेंट, बट आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सेलिंग बिकॉज ऑफ ट्यूशन एंड ट्यूशन हेल्प।
और अपना क्रेडिट किसे देंगे?
क्रेडिट टीचर्स एंड पेरेंट्स।
सीबीएसई टॉपर हंसिका शुक्ला। और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और बहुत दिनों बाद आज मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
मेरा भी नमस्कार है।
इंदु जी, कौन कौन सी ईमेल चिट्ठियां आपके पास हैं, कहां से शुरुआत कर रही हैं?
शुरुआत करते हैं नेपाल से। मुकेश कुमार मिश्र ने हमें ये ईमेल भेजा है बीरगंज से। लिखते हैं कि 1 मई को 15 सुरक्षा कर्मियों सहित 16 लोगों का माओवादी हमले में मौत की खबर ने दिल को दहला दिया। मुझे मेरे बचपन की कई यादें आने लगी जो माओवादी के समय में नेपाल में होता था। मेरा भारत सरकार और माओवादी से विनम्र अनुरोध है कि दोनों मिलकर बातचीत करें और शांति कायम करने का वातावरण बनाएं, जिसका सीधा उदाहरण अभी नेपाल है।
जी बिल्कुल, इन्होंने जो ईमेल लिखा है, बचपन की यादें अपनी हमारे साथ साझा की हैं। नेपाल उस उथल पुथल के दौर से गुजरा है, माओवादी फिर मुख्यधारा की राजनीति में आए हैं और अब सत्ता में हैं, तो बातचीत यहाँ होगी या नहीं होगी ये तो सरकार और माओवादियों को तय करना है, लेकिन आपकी इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि हमारी पहुँच नेपाल तक है और उसके बियॉन्ड भी होगी, तो लिखते रहिएगा।
तो दूसरा ईमेल हमें भेजा है इलाहाबाद से डॉक्टर अनिल शुक्ल ने। लिखते हैं कि गढ़चिरौली में माओवादियों के हमले पर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में दिव्या आर्या की रिपोर्ट बेहतरीन थी, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अनिल शुक्ल, और दिव्या आजकल हमारे हिंदी के कार्यक्रमों में भी शाम को एक राउंड अप देती हैं जो जिसकी बहुत तारीफ लोग करते हैं।
तो आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरत सिंह से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इसकी निंदा करता हूं। तो कुल मिला के अनिल शुक्ल ने लंबी ईमेल में सूरत सिंह और बीबीसी की आलोचना की है।
और मुझे लगता है कि अनिल शुक्ल की आलोचना एकदम बेबुनियाद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि विश्लेषण करने की बजाय कई बार लोग अपनी राय जाहिर करने लगते हैं, लेकिन हम इसलिए उनको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग अगर आते हैं जिन्होंने कुछ नाम कमाया है या कानून के क्षेत्र में कुछ काम किया है तो उनकी राय का भी अपना एक महत्व होता है। सूरत सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इसलिए हम उनको कानूनी जो पेचीदा चीज़ें होती हैं उन पर राय देने के लिए अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं।
और ये है गौतम दत्ता किशनगंज से। बुधवार दिनभर और गुरुवार नमस्कार भारत की सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की खबर को विस्तारित पूर्वक सुना, अच्छा लगा। कुछ दिनों से बीबीसी की शाम की सभा में 4 चांद लग रहे हैं क्योंकि शाम की सभाएं बीबीसी के स्टार वाचक जैसे कि राजेश जोशी, मोहनलाल शर्मा, सारिका सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अनुभवी प्रसारक हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, वो कार्यक्रम आए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो नई फसल है उसको भी तो मौका देना होता है, तो सब्र बनाए रखें जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ। पत्र लिखने के लिए शुक्रिया।
ये हैं बैंगलोर से डॉक्टर बीपी श्रीनिवास। लिखते हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बीबीसी ने प्रज्ञा ठाकुर के इंटरव्यू को इतना कीमती समय दिया। मीडिया इसी तरह बेकार लोगों को मशहूर करता है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी संपादकीय नीति से सहमत नहीं हूँ। क्या आप पर किसी तरह का दबाव था?
बिल्कुल यही बात डॉक्टर श्रीनिवास, हमारे कुछ वो श्रोता भी करते हैं जिनको लगता है कि हम सरकार या बीजेपी या नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं प्रसारण करते हैं, वो भी कहते हैं कि आपके ऊपर किस तरह का दबाव है। तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, आपको मालूम होगा कि बीबीसी की आज़ाद संपादकीय नीति है, किसी का दबाव इस संस्थान पर काम नहीं करता है, और प्रज्ञा ठाकुर को भी हमने इसलिए समय दिया क्योंकि वो एक उम्मीदवार हैं। तो आप उम्मीद है सहमत होंगे, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
चलते चलते सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चक्रवाती तूफान फैनी के मद्देनजर भारत के दक्षिण पूर्वी तट से तकरीबन 8 लाख निवासियों और पर्यटकों को हटाने का काम जारी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपना वादा दोहराते हुए कहा है कि वो साम्राज्यवादी हमले से अपने देश की रक्षा करेंगे। युगांडा के प्रशासन ने 13 रेडियो और टीवी स्टेशनों को न्यूनतम प्रसारण मानकों को पूरा न करने के आरोप में संपादक समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज आज वीडियो लिंक के जरिए लंदन की कोर्ट में पेश हुए। अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा जानकारी लीक करने पर रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को बर्खास्त किए जाने के मामले में सरकार उनके खिलाफ आपराधिक जांच नहीं चाहती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बीबीसी हिंदी की मल्टीमीडिया वेबसाइट के साथ। नमस्कार।